ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व।
नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति लोकतंत्र का महापर्व में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि भारत लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है और हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा के बारे में। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से शुरू हो चुकी है। अभी तक 3 चरणों में मतदाताओं ने अपना राष्ट्र के लिए अपना संकल्प ईवीएम बटन दबाकर जाहिर कर दिया है। चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होनी है, जिसके लिए आज प्रचार अभियान शाम को थम जाएगा। हालांकि चुनाव परिणाम की घोषणा 4 जून को ही होगी। श्रोताओं, अब हम बात करते हैं 1999 से पूर्व के आम चुनावों की। देश मध्यावधि चुनाव के दौर से गुजर रहा था। 1996 से 1999 के बीच 3 लोकसभा चुनाव हुए। पहले 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी, इसके बाद 18 महीने संयुक्त मोर्चा गठबंधन की सरकार रही। बाद में कांग्रेस के समर्थन से इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। देश एक बार फिर मध्यावधि चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। 16 फरवरी 1998 से 7 मार्च 1998 के बीच देश में 12वीं लोकसभा का चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ। यह वह दौर था जब देश में जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता थी और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था। एक एक वोट या पार्टी के सहयोग असहयोग से केंद्र की सरकार गिर रही थी।
कांग्रेस आई ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने के विवाद पर 28 नवंबर 1997 को इंद्र कुमार गुजराल की 14 पार्टियों वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। जब कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, तब तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 4 दिसंबर 1997 को संसद भंग कर दी और समय से पहले देश में एक बार फिर से आम चुनाव की घोषणा कर दी गई। 1999 का लोकसभा चुनाव राजनीतिक स्थिरता से कैसे निपटा जाए, भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए और देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कैसे किया जाए, इस पर हुआ। हालांकि विदेशी निवेश और बीमा क्षेत्र पर राज्य के नियंत्रण को ढीला करने, राष्ट्रवाद, घरेलू उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने, प्रत्यक्ष निवेश को गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक सीमित रखने की वकालत इस चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा की गई। यही नहीं, स्थानीय और व्यवहारिक मुद्दे जैसे नौकरियां, सार्वजनिक सेवाएं, सुरक्षित पेयजल, बिजली, स्वच्छता आदि मतदाताओं के लिए चिंता के विषय तो हमेशा की तरह ही थे।
कुल मिलाकर 7 राष्ट्रीय दलों, 35 क्षेत्रीय दलों, कई छोटे समूहों या निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4,750 उम्मीदवारों ने 539 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतरे। इनमें से 271 महिलाएं थीं। उम्मीदवारों की कुल संख्या वर्ष 1996 की तुलना में महज एक तिहाई थी। जनमत सर्वेक्षण शुरू में भाजपा के पक्ष में थे, लेकिन सोनिया गांधी के मैदान में उतरने के बाद स्थितियां थोड़ी बदली और कांग्रेस ने भी वापसी की। नतीजा यह हुआ कि भाजपा के पक्ष में बन रहा माहौल त्रिशंकु होने की भविष्यवाणी की जाने लगी। इस चुनाव में भाजपा को सबसे अधिक 182 लोकसभा की सीटें मिली, जबकि सहयोगियों की संख्या मिलाकर सीटों की संख्या 265 तक पहुंच गई। कुछ और दलों ने भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का साथ दिया और 15 मार्च को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद 19 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ दिलाई गई। वाजपेयी सरकार को कुल 41 पार्टी अपना समर्थन दे रहे थे।
श्रोताओं, अब बात करते हैं 1998 के लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में सामान्य सीट से 423 उम्मीदवार जीतकर आए, 79 उम्मीदवार अनुसूचित जाति समुदाय से, जबकि 41 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति समुदाय से जीत कर आए, 499 पुरुष उम्मीदवार, जबकि 44 महिला सांसद चुनकर इस चुनाव में लोकसभा पहुंची। 1998 में हुए 12वें लोकसभा चुनाव पर कुल 666.22 करोड़ रुपए खर्च हुए, औसतन प्रति वोटर 11 रुपए खर्च हुए, जबकि 1992 के पहले चुनाव में 10.45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और तब प्रति वोटर 0.6 पैसे खर्च हुए थे। अब आपको 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों से अवगत कराते हैं। इस चुनाव में 60 करोड़ से अधिक मतदाता थे, जिनमें 52.3% पुरुष और 47.7% महिला वोटर थी। इस लोकसभा चुनाव में कुल 62.04% वोट पड़े थे, जिनमें 1.86% वोट अलग अलग कारणों से रद्द कर दिए गए थे। भाजपा को सबसे अधिक 182 सीट, जबकि कांग्रेस को 141,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी
को 32, समाजवादी पार्टी को 20, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 18, राष्ट्रीय जनता दल को 17, समता पार्टी और तेलुगु देशम को 12-12 सीटें, जबकि बीजू जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 9-9 सीटें, श्रोमणी अकाली दल को 8, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस को 7, डीएमके जनता दल शिवसेना और निर्दलीय को 6-6 सीटें और 2 सदस्य मनोनीत किए गए थे, जबकि 51 अन्य उम्मीदवार जीत कर आए थे, 2 पद खाली भी रह गए थे।
श्रोताओं, अब बात करते हैं 1996 के लोकसभा चुनाव के बारे में। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो पिछले 7 दशकों से चुनावी लोकतंत्र का प्रमुख समर्थक रहा है। जब 14 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक प्रतिनिधि सरकार का चुनाव करने के लिए आम चुनावों की योजना बनाई गई। साथ ही चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक था। इसी प्रक्रिया के तहत देश में लोकसभा चुनाव आयोजित किए जाते रहे, जिसके अंतर्गत 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए मतदान हुआ। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, खंडित जनादेश मिला और लोकसभा त्रिशंकु हो गई। हालांकि 161 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वाजपेयी जी ने 16 मई को प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन वह 13 दिन ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। बहुमत साबित न कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वाजपेयी के इस्तीफा देने के बाद जनता दल के नेता HD देवेगौड़ा ने 1 जून को संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार का गठन किया, लेकिन उनकी सरकार भी 18 महीने ही चल सकी। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वह देवेगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश मंत्री थे। कांग्रेस इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। यह सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल सकी। ऐसे में 1998 में देश में एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव कराया गया।
1996 के आम चुनाव में 543 सीटों पर 13,952 प्रत्याशी मैदान में थे। हालांकि 12वें लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या में भारी गिरावट आई और कुल 4,750 उम्मीदवार चुनाव लड़े। जमानत की राशि में अगस्त 1996 में वृद्धि के कारण यह गिरावट दर्ज की गई। 1996 में 12,688 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, जो चुनाव में खड़े कुल प्रत्याशियों का 91% था। 1996 के आम चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 60,58,00,000 से अधिक थी। इनमें से कुल 34,33,00,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस चुनाव के लिए कुल 7,67,462 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में कुल 13,353 पुरुष उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 503 प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। वहीं महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या 599 थी और इनमें से 40 निर्वाचित हुई थी। यह लोकसभा चुनाव के कुल सदस्य संख्या का 7.36% था। 1996 के लोकसभा चुनाव में 62.06 पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि 53.41% महिला वोटर ने वोट डाले थे। उस साल कुल मतदान का प्रतिशत 57.94% था। साथ ही उस लोकसभा चुनाव में 597.34 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
1996 के आम चुनाव के लिए 19 मार्च को तारीखों की घोषणा की गई थी और 27 अप्रैल को मतदान का पहला दिन था। चुनाव के लिए व्यापक रूप से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। तमिलनाडु के मद्रास उत्तर संसदीय सीट से सोमू NVM ने सबसे अधिक मतों से जीत हासिल की थी। उन्हें 3,89,617 मतों से जीत मिली थी। वहीं उस चुनाव में गुजरात में बड़ौदा संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गायकवाड़ सत्यजीत सिंह दिलीप सिंह सबसे कम 17 मतों से निर्वाचित हुए थे। 11वीं लोकसभा में सदस्यों की औसत आयु 52.8 वर्ष थी। उस साल के आम चुनाव में प्रमुख पार्टियों में से भाजपा को 161 सीट, कांग्रेस को 140 और जनता दल को 46 सीटों पर जीत मिली थी। श्रोताओं, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को भारतीय सीमाओं के पार से समर्थित चरमपंथियों की आतंकवादी गतिविधियों के कारण 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने मूल स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 1996 ही वह साल था जब इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद इन प्रवासी मतदाताओं को डाक मतपत्रों के माध्यम से जहां भी वे देश में रह रहे हैं अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए एक योजना बनाई। 2002 से दिल्ली, उधमपुर और जम्मू में स्थापित विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान की व्यवस्था की गई।
श्रोताओं, आपको सुनाते हैं लोकतंत्र के कुछ रोचक किस्से। क्या आपको मालूम है कि देश के पहले आम चुनाव में 86 सीटों पर जीते थे 2-2 सांसद। दरअसल एक स्वस्थ मतदाता सूची किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आधार बनती है। पहले आम चुनाव के लिए पूरे भारत में सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या 17,32,00,000 से अधिक थी। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या का 49% लोगों को पंजीकृत किया गया था। 1991 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 35,66,00,000 से अधिक थी। त्रुटि की संभावना कम थी क्योंकि जनगणना के आंकड़ों से पता चला कि 18 करोड़ से अधिक या 50.55% आबादी ही 21 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में थी। देश के पहले आम चुनाव में 401 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 489 सीट तय की गयी। इनमें 314 एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, 86 दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और 1-3 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र तय किया गया था। जिन सीटों पर 2 या 3 संसद चुने गए उनमें से दूसरा अनुसूचित जाति या जनजाति का था। दो सदस्यीय सीटें 9 मार्च 1961 में बांटी गयी और फिर इन सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गयी।
देश का पहला चुनाव जिनमें महिलाओं के लिए आरक्षित थे 27,000 से अधिक बूथ। देश के पहले आम चुनाव में 17 करोड़ से अधिक मतदाताओं को वोट हासिल करने के लिए कुल 1,32,560 मतदान परिसरों, 1,96,084 मतदान बूथ बनाए गए थे। श्रोताओं, पहले आम चुनाव में बनवानी पड़ी थी लकड़ी की मतपेटियां। मतदान के दौरान बैलेट पेपर को सुरक्षित रखने के लिए 20 गेज स्टील से बने कुल 24,73,850 मत पेटियों का उपयोग किया गया था। वहीं मद्रास राज्य में 1,11,095 लकड़ी की मत पेटियों का उपयोग करना पड़ा क्योंकि एक मेहमान समय पर निश्चित बॉक्स की डिलीवरी नहीं दे सका। भ्रम से बचने के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग रंग की मत पेटियों का उपयोग किया गया। मतदान के लिए 180 टन कागज से 60 करोड़ बैलेट पेपर छपवाए गए जिसकी कीमत 10,77,401 रुपए से अधिक थी। श्रोताओं, पहले आम चुनाव में 14 पार्टियों को मिला था राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेकिन इनमें से केवल 4 की ही स्थिति बरकरार रही। देश के पहले आम चुनाव के पहले 29 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने की मांग की थी। इनमें से केवल 14 को ही यह दर्जा देने का निर्णय लिया गया। हालांकि जब चुनाव हुए तब उसके परिणाम ज्यादातर के लिए अच्छे नहीं रहे। 6 फरवरी 1953 को सिर्फ 4 राजनीतिक दल को ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल की उस स्थिति को बनाए रखने की अनुमति दी गई। ये पार्टियां थी कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय जनसंघ।
श्रोताओं, ऐसा ही एक रोचक किस्सा है शुरुआती 2 आम चुनाव का जिसमें हर प्रत्याशी के लिए अलग मतपेटियां बनाई गई थीं। देश के पहले और दूसरे लोकसभा आम चुनाव में बड़े ही असामान्य तरीके से नागरिकों ने वोट प्राप्त किए थे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के नाम और उनके चुनाव चिन्ह वाली मतपेटियां पंक्ति में लगाई गई थीं। मतदाता को बैलेट पेपर चुनना था और उसे अपनी पसंद के प्रत्याशी की मतपेटी में उसे डालना था। क्योंकि बैलेट पेपर पर निशान लगाने का कोई विकल्प नहीं था इसलिए इसकी पहचान नहीं रहती थी कि किसका वोट किधर गया। राजनीतिक दल इस पद्धति से सहज थे इसलिए इसमें किसी बदलाव का विरोध किया। दूसरे आम चुनाव के उपचुनाव में ही चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर सका। इसमें जनप्रतिनिधित्व नियम 1956 में संशोधन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के सार्वभौमिकरण तक यह पद्धति आगामी 45 वर्षों के लिए मानक बन गई थी। श्रोताओं, आज के अंक में इतना ही। कल भी लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व। इसे प्रस्तुत कर रहे थे पत्रकार संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।